शील निरूपण और चरित्र चित्रण का शेष अंश पृष्ठ 79। उस वृद्धावस्था में वे अपनी छोटी रानी के वश में थे। यह उस घबराहट से प्रकट होता है जो उसका कोप सुनकर उन्हें हुई। वे उसके पास जाकर कहते हैं, अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा, के दुई सिर के ही जम चह लिन्हा, कहु के ही रंग कही रकहु नरेसु, कहु के ही निप्रही निकासहु देसु, जानसी मोर सुभाउ बरोरु, मन तब आनन चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, प्राण पुत्र परिजन प्रजा सबको कैकेयी के वश में कहना स्वयं राजा का कैकेयी के वश में होना अभिव्यंजित करता है। एक स्त्री के कहने से किसी मनुष्य को यमराज के यहाँ भेजने के लिए, किसी दरिद्र को राजा बनाने के लिए, किसी राजा को देश से निकालने के लिए तैयार होना अस्त्रैण होने का ही परिचय देना है। कैकेयी के सामने जाने पर न्याय और विवेक थोड़ी देर के लिए विश्राम ले लेते थे। वाल्मीकि जी ने भी इसी प्रकार की बातें उस अवसर पर दशरथ से कहलाई हैं। पैराग्राफ चेंज। दशरथ के हृदय की इस दुर्बलता के चरित्र के भीतर प्रचलित दाम्पत्य विधान का वह दोष भी झलकता है जिसके पूर्ण परिहार का पथ आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने आचरण द्वारा प्रदर्शित किया। आधी उम्र तक विवाह पर विवाह करते जाने का परिणाम अंत में एक ऐसा बेमेल जोड़ा होता है जो उस सब मामलों का मेल बिगाड़ देता है और जीवन किरकिरा हो जाता है। एक में तो प्रेम रहता है, दूसरे में स्वार्थ। अतः एक तो दूसरे के वश में हो जाता है और दूसरा उसके वश के बाहर। एक तो प्रेम वश दूसरे के सुख संतोष के प्रयत्न में रहा करता है, दूसरा उसके सुख संतोष की वही तक परवाह रखता है जहाँ तक उसमें स्वार्थ साधन होता है। राम ने एक भार्या की मर्यादा द्वारा जिस प्रकार प्रेम के अपूर्व माधुर और सौंदर्य का विकास दिखाया, उसी प्रकार अपने पिता की परिस्थिति से भिन्न अपनी परिस्थिति भी लोक को दिखाई। कैकेयी ने एक बार दशरथ के साथ युद्ध स्थल में जाकर पहिए में उंगली लगाई थी और उसके बल में दो वरदान लिए थे। तो सीता 14 वर्ष राम के साथ जंगलों पहाड़ों में मारी मारी फिरी और उस मारे मारे फिरने को ही उन्होंने अपने लिए बड़ा भारी वरदान समझा। अंत में जब राजधर्म की विकट समस्या सामने आती है तब हम राम को ठीक उसका उल्टा करने में समर्थ पाते हैं जो दशरथ ने कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए कहा था। दशरथ एकमात्र कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए किसी राजा को बिना अपराध देश से निकालने के लिए तैयार हुए थे, पर राम प्रजा को प्रसन्न करने के लिए बिना किसी अपराध के प्राणों में भी प्रिय सीता को निकालने को तैयार हुए। दशरथ अपनी स्त्री के कहने से किसी राजा तक को देश से निकालते, पर राम ने एक धोबी तक के कहने से अपनी स्त्री को निकाल दिया। इतने पर भी सीता और राम में जो परस्पर गूढ़ प्रेम था उसमें कुछ भी अंतर न पड़ा। सीता ने स्वामी के इस व्यवहार का कारण राजधर्म की कठोरता ही समझा, यह नहीं समझा कि राम का प्रेम मेरे ऊपर कम हो गया। पैराग्राफ चेंज। पृष्ठ 80। सात्विक, राजस और तामस इन तीन प्रकृतियों के अनुसार चरित्र विभाग करने से दो प्रकार के चित्रण हम गोस्वामी जी में पाते हैं, आदर्श और सामान्य। आदर्श चित्रण के भीतर सात्विक और तामस दोनों आते हैं राजस को हम समान चित्रण के भीतर ले सकते हैं। इस दृष्टि से सीता, राम, भरत, हनुमान और रावण आदर्श चरित्र के भीतर आवेंगे तथा दशरथ, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, कैकेयी समान चित्रण के भीतर। आदर्श चित्रण में हम या तो यहाँ से वहाँ तक सात्विक वृत्ति का निर्वाह पाएंगे या तामस का। प्रकृति भेद सूचक अनेक रूपता उसमें न मिलेगी। सीता, राम, भरत, हनुमान ये सात्विक आदर्श हैं। रावण तामस आदर्श है। सात्विक आदर्शों का वर्णन हो चुका। हनुमान के संबंध में इतना समझ रखना आवश्यक है कि वे सेवक के आदर्श हैं। सेव्य सेवक भाव का पूर्ण स्फुरण उनमें दिखाई पड़ता है। बिना किसी प्रकार के पूर्व परिचय के राम को देखते ही उनके सील, सौंदर्य और शक्ति के साक्षात्कार मात्र पर मुग्ध होकर पहले पहल आत्मसमर्पण करने वाले भक्ति राशि हनुमान ही हैं। उनके मिलते ही मानो भक्ति के आश्रय और आलंबन दोनों पक्ष पूरे हो गए और भक्ति की पूर्ण स्थापना लोक में हो गई। इसी राम भक्ति के प्रभाव से हनुमान सब राम भक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए। सेवक में जो जो गुण चाहिए सब हनुमान में लाकर इकट्ठे कर दिए गए हैं। सबसे आवश्यक बात तो यह है कि स्वामी के कार्यों के लिए, सब कुछ करने के लिए उनमें नीरसता और तत्परता हम हर समय पाते हैं। समुद्र के किनारे जब बंदर बैठे समुद्र पार करने की चिंता कर रहे थे, अंगद फिरने का संयस करके आगा पीछा कर ही रहे थे कि वे चट समुद्र लांग गए। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तब वैद्य को भी चट हनुमान ही लाए और औषधि के लिए भी पवन वेग से ही वे दौड़े। सेवक को अमानी होना चाहिए। प्रभु के कार्य साधन में उसे अपने मान अपमान का ध्यान न रखना चाहिए। अशोक वाटिका में से पकड़कर राक्षस उन्हें रावण के सामने ले जाते हैं। रावण उन्हें अनेक दुर्वाद कहकर हंसता है। इस पर उन्हें कुछ भी क्रोध नहीं आता। अंगद की तरह है तब दसन तोरिबे लायक, वे नहीं कहते। ऐसा करने से प्रभु के कार्य में हानि हो सकती थी। अपने मान का ध्यान करके स्वामी का कार्य बिगाड़ना उनका कर्तव्य नहीं। वे रावण से साफ कहते हैं, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन न चहु निज प्रभु कर काजा। जिस प्रकार राम राम थे उसी प्रकार रावण रावण था। वह भगवान को उन ललकारने वालों में से था जिसकी ललकार पर उन्हें आना पड़ा था। बाल कांड में गोस्वामी जी ने पहले उसके उन अत्याचारों का वर्णन करके जिनसे पीड़ित होकर दुनिया पनाह मांगती थी तब राम का अवतार होना कहा है। वह उन राक्षसों का सरदार था जो गांव जलाते थे, खेती उजाड़ते थे, चौपाएं नष्ट करते थे। पृष्ठ 81। ऋषियों को यज्ञ आदि नहीं करने देते थे। किसी की कोई अच्छी चीज देखते थे तो छीन लेते थे और जिनके खाए हुए लोगों की हड्डी से दक्षिण का जंगल भरा पड़ा था। चंगेज खां और नादिर शाह तो मानो लोगों को उसका कुछ अनुमान कराने के लिए आए थे। राम और रावण को चाहे अहुरमज़द और अनहमान समझिए, चाहे खुदा और शैतान, फर्क इतना ही समझिए कि शैतान और खुदा की लड़ाई का मैदान इस दुनिया से जरा दूर पड़ता था और राम रावण की लड़ाई का यह मैदान यह दुनिया ही थी। ऐसे तामस आदर्श में धर्म के लेश का अनुसंधान निष्फल ही समझना पड़ेगा। पर हमारे यहाँ की पुरानी अक्ल के अनुसार धर्म के कुछ आधार बिना कोई प्रताप और ऐश्वर्य के साथ एक क्षण नहीं टिक सकता। रावण तो इतने दिनों तक पृथ्वी पर रहा, अतः उसमें धर्म का कोई न कोई अंग अवश्य था। वह अंग अवश्य था जिससे शक्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसमें कष्ट सहिष्णुता थी, वह बड़ा भारी तपस्वी था। उसकी धीरता में कोई संदेह नहीं है। भाई पुत्र जितने कुटुंबी थे सबके मारे जाने पर भी वह उसी उत्साह के साथ लड़ता रहा। अब रहे धर्म के सत्य आदि और अंग जो किसी वर्ग की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, उनका पालन राक्षसों के बीच वह अवश्य करता रहा होगा। उसके बिना राक्षस कुल रह कैसे सकता था? पर धर्म का पूर्ण भाव लोक व्यापक तत्व में है। यो तो चोर और डाकू भी अपने दल के भीतर परस्पर के व्यवहार में धर्म बनाए रखते हैं। लोक धर्म वह है जिसके आचरण से पहले तो किसी को दुख न पहुँचे, यदि पहुँचे भी तो विरुद्ध आचरण करने से, जितने लोगों को पहुँचता है उससे कम लोगों को। सारांश यह है कि रावण में केवल अपने लिए और अपने बल के लिए शक्ति अर्जित करने भर को धर्म था, समाज में उस शक्ति का सदुपयोग करने वाला धर्म नहीं था। रावण पंडित था, तपस्वी था, राजनीतिक कुशल था, धीर था, वीर था, पर सब गुणों का उसने दुरुपयोग किया। उसके मरने पर उसका तेज राम के मुख में समा गया। सत से निकलकर जो शक्ति असत रूप हो गई थी वह फिर सत में विलीन हो गई। पैराग्राफ चेंज। अब सामान्य चित्रण लीजिए। राम के साथ लक्ष्मण का शील निरूपण कुछ हो चुका है। यहाँ केवल यही कहना है कि उनकी क्षमता ऐसी न थी कि जो करुणा या दया के गहरे अवसरों पर भी कोमलता या आर्द्रता न आने दे। सीता को जब वे वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ने गए थे तब वे करुणा भाव में मग्न थे। उनके मुंह से कोई बात न निकली थी। वे राम के बड़े भारी आज्ञाकारी थे। वे अपने हृदय के वेग को सहकर भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। क्रोध उन्हें कटु वचन के लिए उभारता था, पर राम का रुख देखते ही वे चुप हो जाते थे। सीता के वनवास की कठोर आज्ञा राम के मुख से सुनते ही वे सूख गए, करुणा से विह्वल हो गए, पर जी कड़ा करके वे सीता को पहुंचा आए। आज्ञाकारिता के लिए वे आदर्श हुए, पर यह नियम भी ऐसे अवसरों पर उन्हें शिथिल कर दिया जब आज्ञा के पालन में उन्होंने अधिक हानि देखी और उल्लंघन का परिणाम केवल अपने ही ऊपर देखा। इन सब बातों के विचार से उनका चरित्र सामान्य के भीतर ही रखा है।